नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम आज पटना आ रही है। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर टीम सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव का शिलान्यास वर्चुअल मोड में करेंगे। पानी की बड़ी बोतल, कॉपी और साइकिल होगी सस्ती, जीएसटी मंत्री समूह ने बैठक में लिया निर्णय। और भोजपुर तथा बक्सर जिले से 11 करोड़ रुपए मूल्य के हाथी दांत के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचेगी। 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी कर रहे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि टीम आज और कल प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। इसके अलावा 22 अक्टूबर को यह दल राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। बैठक में बाढ़ के कारण हुए नुकसान को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी अपनी राय रखेंगे। उन्होंने कहा कि तटबंधों, सड़कों, इमारतों, फसल, बिजली आपूर्ति लाइनों को भारी नुकसान के मद्देनजर राज्य सरकार ने केंद्र से 3,638 करोड़ रुपए की राहत और सहायता मांगी है। श्री सुमन ने कहा कि इस सहायता का उपयोग बाढ़ क्षतिपूर्ति, फसल क्षति मुआवजा प्रदान करने और बाढ़ के दौरान ध्वस्त हुई अन्य संरचनाओं को बहाल करने के लिए किया जाएगा।
केंद्रीय टीम हमारे पास आ रही है, जो 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम आ रही है, श्री पार्थ सारथी जी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के हैं, उनके द्वारा जो 20 तारीख को 21-22 को दौरा करेगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, और 22 तारीख को यहाँ ऑफिशियल मीटिंग होगी, उसके बाद आकलन होगा और वो आकलन कर करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि इस साल अगस्त और सितंबर महीने में करीब 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण उत्तर बिहार में व्यापक क्षति हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा के एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव का शिलान्यास वर्चुअल मोड में करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिलान्यास समारोह को लेकर दरभंगा में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।
दरभंगा का हवाई अड्डा उद्घाटन के बाद 4 साल से भी कम अवधि में देश का सफलतम हवाई अड्डा साबित हुआ है। नए सिविल इनक्लेव के बन जाने से हवाई अड्डा का विस्तार होगा और यहां पर यात्री सुविधाएं बढ़ जाएगी। 2020 में दरभंगा हवाई अड्डे की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान के तहत शुरुआत की गई थी। यह फिलहाल उत्तर बिहार के 14 जिलों के सुगम हवाई आवाजाही के महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मिथिला क्षेत्र के अलावा पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के लोगों को भी सेवा प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 34,15,50,000 टन रखा गया है। उन्होंने नई दिल्ली में रबी सीजन 2024 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।
दलहन और तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प प्रारंभ किया है और इसलिए हमने किसानों को सबसे पहली शर्त है अच्छा बीज देना। अच्छे बीज देने के लिए मिनी किट प्रदान करने का एक अभियान प्रारंभ किया है।
श्री चौहान ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और रसायनों तथा उर्वरकों पर निर्भरता घटाने के लिए जैविक और प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना और कृषि लागत घटाना तथा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। जीएसटी दर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने 20 लीटर पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक पर जीएसटी दर की सीमा घटाने का निर्णय लिया है। समिति ने सावधिक जीवन बीमा प्रीमियम और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पर छूट के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही महंगी कलाई घड़ी और जूते पर टैक्स बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मंत्री समूह लोगों को राहत देना चाहता है। उन्होंने कहा कि सिफारिशों पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद करेगी। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर विभिन्न दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा शुरू कर दी है। एनडीए की ओर से भाजपा ने भोजपुर जिले की तरारी सीट पर विशाल प्रशांत और कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। विशाल प्रशांत पूर्व विधायक सुनील पांडे के पुत्र हैं। वे हाल ही में जनता दल यूनाइटेड छोड़कर भाजपा में आए थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को इमामगंज सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। इधर उपचुनाव वाले चारों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक निर्धारित है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 13 नवंबर को होगा। दीपावली और छठ पूजा पर उत्तरी और पूर्वी राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने दानापुर, छपरा, समस्तीपुर और मुंबई समेत देश के विभिन्न स्थानों से कुल 570 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला लिया है। मध्य रेलवे के अनुसार उत्तर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए दानापुर, गोरखपुर, छपरा, बनारस, समस्तीपुर, आसनसोल, अगरतला, संतरागाछी और अन्य स्थानों के लिए 378 रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। यात्री इन गाड़ियों की पूरी समय सारणी www.inquiry.indiarail.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं और NTES ऐप से भी जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रण दिवस है। पहली बार यह दिवस 20 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था और उसके बाद से हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है। यह दिवस विमानन उद्योग के उन गुमनाम नायकों को याद करने का दिन है जो लोगों की हवाई यात्रा को सुरक्षित और कुशल बनाना सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकारी प्रतिदिन हजारों उड़ानों का संचालन करते हैं। उड़ान से लेकर लैंडिंग तक सब कुछ समन्वय करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली की टीम ने भोजपुर और बक्सर जिले से 11 करोड़ रुपए मूल्य के 45 किलो हाथी दांत के साथ 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि हाथी दांत को बरामद करने के लिए आरा मुफस्सिल, नवादा और टाउन थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अधिकारी ने बताया कि दो हाथी दांत और कुछ पशु अंग बक्सर से बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 तस्कर आरा से और 5 बक्सर से पकड़े गए हैं। मुंगेर जिले में साइबर अपराधी पुलिस अधीक्षक के कर्मचारी और अधिकारी बनकर फर्जी कॉल कर लोगों से ठगी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि गंगटा थाना अध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
ऐसा कुछ सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि जिसमें एसपी ऑफिस के नाम से कुछ व्यक्ति लोगों को फोन किया जाता है और उन व्यक्ति जो है वो किसी केस का मुदाले होते हैं और उनसे बात की जाती है कि ये बोला जाता है कि हम एसपी ऑफिस से बोल रहे हैं और आप केस खत्म कराना है तो आप हमको 5,000 रूपये ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफर कर दें। तो हम लोगों ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी केस दर्ज किया है और इसमें मीडिया के माध्यम से आमजनों को एक अपील भी करना चाहेंगे मुंगेर पुलिस की ओर से कि ऐसा अगर कोई भी कॉल आपको आता है कि जिसमें आपको बताया जाता है कि एसपी ऑफिस से हम बोल रहे हैं और केस मैनेज करने के नाम से या केस को दबाने के नाम से हम आपको ठगने के उद्देश्य से ये करता है, इसमें एसपी ऑफिस का कोई भी लेना देना इससे नहीं है।
प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 189 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें 97 मरीज पटना के हैं। इधर वैशाली में 12, बेगूसराय में 10, सीवान में 9, मुजफ्फरपुर और गया में 6-6 समेत अन्य जिलों से भी मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं राज्य में अब तक डेंगू के 5,449 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने डेंगू से बचाव के संबंध में जानकारी दी।
ये लोगों में भ्रांतियां हैं कि प्लेटलेट की कमी होने से रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है, ऐसा नहीं है। प्लेटलेट की कमी होती है और कमी होने के कारण अगर ज्यादा कमी होगी तो शरीर में चित्तियां होने लगेंगी और अंदर में खून का रिसाव होने लगेगा, लेकिन उससे रोगी की मृत्यु नहीं होती है। कि मृत्यु जब भी होती है वो शरीर में पानी की कमी से होती है, तरल पदार्थ की कमी से होती है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में तरल पदार्थ की कमी किसी भी कीमत पर न हो, जितना संभव हो सके हम पानी पीते रहें और तरल पदार्थ उसके ज्यादा से ज्यादा सेवन करें।
पटना में बन रहे समाहरणालय भवन में छठ के बाद कामकाज शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसकी जानकारी दी। इस परिसर में पुरानी इमारत के डचकालीन पिलरों को संरक्षित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि नए बन रहे समाहरणालय भवन में 8 डचकालीन पिलर हैं, इन्हें संरक्षित किया जा रहा है। बधिर श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए आयोजित T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप के खिलाफ दिल्ली की टीम ने जीत लिया है। ऊर्जा स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मैच में दिल्ली ने पश्चिम बंगाल को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। 3 दिनों तक चले इस मुकाबले में देश की 19 टीमों ने भाग लिया। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आलेकर और राजस्व तथा भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों के साथ लोगों को मानवीय व्यवहार करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सासाराम के डाक अधीक्षक को 3,47,000 रूपये के साथ आरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पटना जिले के 9 पैक्स अध्यक्ष और 91 कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव लड़ने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी समरेश कुमार ने बताया कि इन लोगों पर धान अधिप्राप्ति के बाद चावल जमा नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, मछली उत्पादन में बिहार हुआ आत्मनिर्भर, ड्रोन तकनीक के उपयोग से राज्य के मत्स्य पालकों को होगा लाभ। दैनिक जागरण ने आतंकियों के विमानों को उड़ाने की फर्जी कॉल को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। दैनिक भास्कर ने शराब कांड पर लिखा है, जब लोग मरने लगे तो शराब शौचालय की टंकी में बहा दी। प्रभात खबर का शीर्षक है, ईडी ने संजीव हंस की 14 दिन की रिमांड मांगी। आज अखबार की सुर्खी है, ऑनलाइन हाजिरी पर शिक्षकों को मिलेगा अगला वेतन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम आज पटना आ रही है। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर टीम सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव का शिलान्यास वर्चुअल मोड में करेंगे। पानी की बड़ी बोतल, कॉफी और साइकिल होगी सस्ती, जीएसटी मंत्री समूह ने बैठक में लिया निर्णय। और भोजपुर तथा बक्सर जिले से 11 करोड़ रुपए मूल्य के हाथी दांत के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।